रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अब ये लंका कांड है। देखो वाल्मीकि जी महाराज ने तो लंका कांड नाम नहीं दिया, युद्ध कांड नाम दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने जो नाम रखे, तुलसीदास जी ने सब नाम वो के वो रखे हैं, परंतु वाल्मीकि जी महाराज ने जो कथा वस्तु जिसमें दी उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर किया है। कथा वही है, जैसे अत्रि जी का प्रसंग है तो वाल्मीकि रामायण में वो अयोध्या कांड में ही आ गया, लेकिन यहां इन्होंने अरण्य कांड में दिया। ऐसे ही विभीषण की शरणागति है, वो वहां से प्रसंग लेकर के हनुमान जी का वो सब मिलना जो सब प्रसंग है ये युद्ध कांड में आता है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर कांड में लिया है और युद्ध कांड का नाम लंका कांड रखा। अब क्यों रखा वो तो गोस्वामी जी महाराज जाने, परंतु जैसी चौपाइयां दी है उनके अनुसार ऐसा लगता है कि जब अयोध्या कांड नाम दिया है तो इन्होंने लंका कांड भी दिया, केवल युद्ध के लिए नहीं, इसमें कई ऐसी विचित्र भगवान की भक्ति की घटनाएं हुई है, इस कारण से इसका नाम लंका कांड दिया। क्योंकि लंका यक्षों की नगरी थी, पवित्र नगरी थी, इसमें पवित्र आत्मा रहते थे। रावण का बड़ा भाई कुबेर था, उसके पास खूब धन का खजाना, सारी सृष्टि का खजाना उसी के पास था। तो उस कुबेर ने ये बात कही कि जी मेरे को ऐसी जगह दीजिए जो सब ओर से सुरक्षित हो और मुझे ऐसा साधन दीजिए कि जहां भी जरूरत पड़े वहां पर मैं ये धन दे सकूं। तो पुष्पक तो विमान दे दिया उसको और लंका जैसी नगरी दे दी, चारों तरफ समुद्र है, फिर पर्वत है, पर्वत के ऊपर वहां बीच में लंका है, सब प्रकार से सुरक्षित। वो लंका रावण को मिल गई, बाहुबल पर ले लिया। तो उस लंका के अंदर भगवान की भक्ति कैसे होती है, उस लंका में भी कैसे कैसे पुरुष रहते हैं, उनके द्वारा कितना भक्ति का प्रचार हुआ है, ये सब बातें आने से इसका नाम लंका कांड रखा है। पहला श्लोक है उसमें भगवान राम की वंदना है, इसमें श्रगधरा छंद है। ये छंद अपने आप में एक अलग ही होता है। रामम कामारि सेव्यम, भगवान राम कैसे है, काल मत्तेव सिंहम, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए भगवान राम सिंह के समान है। और आगे यहां लड़ना है इनको, खलवद निरतम, दुष्टों के वध में हरदम लगे रहते हैं। ऐसे ब्रह्म वृंदैक देवम, ज्ञानियों के समुदाय में एकमात्र परम देवता परम आराध्य राम। और कंदावदातम, कंद बोलते हैं झरने को, जैसे आनंद कंद बोलते हैं, कंद वो है जी आनंद जिसमें से झरता हो। तो कंदावदातम माने जो बादल जिससे झरते हैं बादल में से ये वर्षा झरती है, उसके समान ये अवदात माने बड़े सुंदर हैं भगवान। और फिर दूसरे श्लोक में भगवान शंकर की वंदना की कि शंखेन द्वावमतीव सुंदर तनु, शंख और इंदु, शंख माने शंख है जो बजाते हैं, शंख और इंदु माने चंद्रमा, एकदम सफेद गौर वर्ण वाले शंकर भगवान। और सबसे बड़ी बात क्या है, काल व्याल कराल भूषण धरम। देखो भगवान शंकर भी सर्प को साथ में रखते हैं, भगवान विष्णु भी सर्प को साथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं सर्प को, हमको बताने के लिए कि काल व्याल कराल भूषण धरम। देखो काल है ना, काल ये सर्प के समान है। जिस सर्प को दिखने में तो ये सर्प बड़ा चिकना बड़ा सुंदर दिखता है, रंग बिरंगा दिखता है, काला होते हुए भी उसकी चमक आती है, सर्प की एक चमक होती है, चमकता है सर्प, परंतु उसके अंदर जहर कितना है। ऐसे ही संसार बाहर से कितना भी सुंदर है, वो मन से उसकी कल्पना से हमने उसको सुंदर बना लिया, वास्तव में सुंदर नहीं है, ये सर्प के समान सबको डसने वाला है। ऐसा उपदेश देने के लिए भगवान शंकर तो गले में सर्प रखते हैं और भगवान विष्णु उसके ऊपर आराम करते हैं। गंगा शशांक प्रियम, गंगा जी और चंद्रमा को साथ में रखते हैं। देखो शशांक प्रियम और गंगा, गंगा जी के द्वारा कितना उपकार होता है। देखो सर्प तो रहता है गले में और गंगा जी और चंद्रमा दोनों रहते हैं भगवान के सिर के ऊपर, तो जो दूसरों का उपकार करने वाला होता है और दूसरों को जो प्रसन्न करने वाला होता है, वो भगवान शंकर अपने सिर पर अपने गोद में अपने ऊपर उसको बैठाए रखते हैं। ऐसे भगवान शंकर है तो खलानाम दंड कृद्यो सहु, जो भगवान शंकर दुष्टों को दंड देने में लगे रहते हैं वो भगवान सभी का कल्याण करें। कहते हैं कि देखिए ये जो लव निमेश परमाणु युग बरस कल्प सरचंड, ये आज ये दिन आ गया, आज ये तिथि आ गई, आज इतना बज गया, आज ये आ गया, ये क्या है, ये भगवान के काल दंड, ये बाण है बाण। हमको कितने वर्ष आ गए जी कि आप हम इतने वर्ष के हो गए, अच्छा और अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन चल रहा है, ये सब भगवान के बाण है, ये काल रूपी बाण। लव निमेश परमाणु जुगर बरस कलप, ये क्या है, सर चंड, ये भगवान के तीक्ष्ण बाण है। इन बाणों से घायल हुआ हुआ प्राणी फिर भी भगवान का भजन नहीं करता है, इस बात को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। भजसिन मनते ही राम को काल जासु कोदंड, ये काल तो भगवान का शस्त्र है, डरते नहीं हो अरे मनीराम, भगवान का भजन नहीं करते हो, इतनी आफत आ रही है फिर भी तुम विषयों की तरफ दौड़ते हो, क्या है ये। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ये तो गोस्वामी जी महाराज का मंगलाचरण हुआ। अब आगे की कथा कहते हैं कि जब सिंधु भगवान के सामने आकर के नम्र हो गए, तब भगवान ने अपने मंत्रियों से कहा, देखो भाई समुद्र ने तो अपना उपाय बता दिया, अब देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी पुल बनाओ और सेना को पार करो। जामवंत जी महाराज कहने लगे कि हे महाराज, ये सेना क्या बिना पुल के पार हो नहीं सकती। महाराज आपका नाव ऐसा है जो भवसागर से लोगों को पार कर दे, ये बंदरों की सेना बिना पुल के लंका पर जा नहीं सकती और ये समुद्र पार नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या है, यह लघु जलधि करत तरत कति बारा, एक छोटा सा समुद्र है महाराज, इसको तरने में क्या क्या समय लगता है। भगवान चुप रहे। इतने में हनुमान जी ने देखा भगवान इस समय बड़े खुश है, तो हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी भी एक बात निवेदन करने की हो रही है, बोलो। महाराज आपका क्रोध है ना इतना भयंकर है कि कितनी बार आपने समुद्र को सोख लिया था, आपका क्रोध है, ये वडवानल है, वडवानल, वडवानल माने समुद्र में जो आग लगती है, क्या समुद्र में भी आग लगती है क्या, आप देखिए समुद्र के ऊपर कई बार यूं भाप आती, भाप चढ़ती है। तो प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, आपके आपका जब यश फैला, आपका प्रताप, आपका क्रोध उसी समुद्र है, ये कई बार यह सूख गया। फिर क्या हुआ, सूखने के बाद आपके जो शत्रु लोग थे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, विधवा हुई तो वो रोने लगी, तो रोते 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 उनके आंखों से खारा पानी निकला, उस खारा पानी से वापिस भर गया महाराज, भरे उबाहोरी भय उते ही खारा, ये खारा हो गया। ऐसी हनुमान जी महाराज की अलंकृत वाणी सुनकर के सब बंदर बड़े खुश हो गए, और बंदर खुश होकर के क्या करते हैं, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी, भगवान की ओर देखने लग गए, अर्थात भगवान की महिमा गाओ तो हृदय में भगवान को बसा करके भगवान की महिमा गाओ और भगवान की महिमा सुनो। फिर जामवंत जी बोले, ए नल और नील क्या कर रहे हो तुम, आओ आओ बनाओ पुल बनाओ, राम प्रताप देखो, ऐसे नहीं अपने प्रताप पर नहीं, भगवान का प्रताप अपने दिल में रखना हो और बिना प्रयास ही आप सब लोग यह पुल बनाओ। और फिर जामवंत जी ने कहा, अरे पुल तो बनाएंगे पर बनाएंगे काय से, एक बंदरों जाओ लगाओ एक एक छलांग, लगाओ एक एक पर्वत ले आओ जाओ। ये बात सुनते ही बंदर लोग एक साथ सब उठे, इधर उधर गए, धावो मरकट विकट बरू था, और आनो बिटप गिरन के जू था, लाओ ना पर्वत के पर्वत ला करके यहाँ रख दो। तो वे बंदर क्या बोले, सुनी कपी भालू चले करी हु हा हु और हा कर हु हा, ऐसे करते करते सब बंदर गए। जय रघुवीर प्रताप समूहा, भगवान की खूब जय जयकार करते, खूब उत्साह आया उनके मन में। और थोड़ी देर में हे भरद्वाज महाराज वहां पर बड़े बड़े पर्वत ला ला करके इकट्ठे कर दिए, वृक्ष भी उखाड़ लाए, ला करके नल और नील को देते हैं, और जाने क्या नल और नील में भगवान की कृपा थी, ये लिया रखा अब चलो आगे, वो आगे रख दिया, वो आगे रख दिया, वो आगे रख दिया, वो ऐसे करते करते बड़ा सुंदर जो है सेतु बनाया, कंदुक इवंदल नील तेले ही, अरे गेंद की तरह से पर्वत पकड़ रहे थे, वो यूं फेंक रहे थे एक दूसरे पर, बड़ा सुंदर वहां पर वो सेतु बन गया। थोड़ी देर में तो भगवान उस सेतु के पास आकर के, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया सेतु बना दिया जी, ये धरणी बड़ी उत्तम है, जमीन बड़ी श्रेष्ठ है, इसकी तो महिमा कुछ कही नहीं जा सकती, बड़ी पवित्र जगह है, यहां भगवान शंकर की स्थापना करने की मेरे मन में बार बार कल्पना हो रही है, जाओ जाओ बंदरों मंदिर की स्थापना करनी है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जितने यहां ऋषि मुनि है सबको ले आओ। बंदर गए, इसमें नहीं आता है, वाल्मीकि में भी नहीं आता है, किसी रामायण में आता है कि बंदर रावण के पास भी गए, रावण को कहा कि महाराज आप चलिए, आप ब्राह्मण हो, और राम जी वहां पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे, आप शिव भक्त हो और ब्राह्मण भी हो, कर्मकांड को जानने वाले हो, विद्वान हो, कि चलो। पर एक बात है, राम कर रहा है क्या कि हाँ, तो राम अकेला तो बैठेगा तो ठीक नहीं है, राम को तो जोड़े सहित बैठना चाहिए। तो वो रावण सीता सहित आया, सीता सहित आकर के वहां राम जी ने रावण को ब्राह्मण मान के उसके चरणों में प्रणाम किया, बैठाया। रावण ने कहा कि भाई सीता जी को आप बाईं तरफ बैठाओ, बाईं तरफ बैठा करके खूब आनंद से वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई, पूजन किया, और पूजन करने के बाद फिर जो है सबको वहां से विदा कर दिया। वहां भगवान ने एक घोषणा की कि देखो आप सृष्टि के सब बड़े बड़े ब्राह्मण लोग और सब लोग आए हुए हो, हमारी एक बात सुनो कि देखो कोई आदमी शिवजी के साथ तो द्रोह रखेगा, क्या है शिवजी है, शिवजी तो ये आंकड़े का पत्ता खाते हैं कि दतूरा खाते हैं कि ये खाते हैं कि वो खाते हैं, ये शिवजी किसी काम के नहीं, हमारे तो राम जी की कई लीला है, शिवजी की क्या लीला हुई बताओ, बहुत कम लीला है, हमारे राम जी की कितनी लीला है, तो मेरी तो भक्ति की बात कहे और शिवजी के साथ द्रोह करे वो नर कभी भी स्वप्न के अंदर मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो शंकर जी का तो प्रिय बने और मेरे साथ द्रोह करे, वो कल्प भर तक नरक में निवास करेगा। इसलिए शिव मेरा भक्त होता है वो शिव जी के साथ द्रोह नहीं करता, और शिव का भक्त होता है वो मेरे साथ द्रोह नहीं करेगा। और जो इस रामेश्वर का दर्शन करेगा वो सब अपने वो जो है दिव्य शरीरों में दिव्य लोक में चला जाएगा, गंगा जल चढ़ाएगा तो फिर कहना ही क्या है। और मेरी और शंकर की निष्काम भाव से भक्ति करने पर, इस देश का सेवन करने पर उसका निश्चित कल्याण है। ये बात सुनकर के सब ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में चले गए। अब वहां पूजन उजन करा करके और रावण फिर वापस राम जी के सामने सीता जी को ले जाने, बंदरों ने कहा कि महाराज सीता जी तो आ गई कि ठीक है, अभी नहीं, अभी रावण ब्राह्मण बना हुआ है, हमारा कर्मकांड का काम किया हुआ है, इसलिए अभी हम रावण से सीता नहीं, हम युद्ध करके ही लेंगे, हम जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा करेंगे। यहाँ नहीं है ऐसा, किसी रामायण में ऐसा आता है। वो क्यों आता है कि उस जगह की पवित्रता बताने के लिए कि रामेश्वर कितनी पवित्र जगह है कि रावण ने भी वहां राम जी से द्रोह छोड़ दिया, क्लेश छोड़ दिया, ऐसा प्रेम और सौहार्द का बर्ताव किया। अस्तु, जब वो इस प्रकार से सेतु बन गया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सेतु तो राम जी की कृपा को बताने वाला है। बूढ़ई आ नहीं बोरही जय, बूढ़ई आ नहीं और बोरही जय, पत्थर एक ऐसी चीज है कि खुद भी डूबने वाला है और कोई पत्थर को पकड़ करके पानी में चला जाए तो दूसरा भी डूब जाएगा। तो बूढ़ई आ नहीं माने अपने को तो ये डूबोता ही है और बोरही जय और दूसरे को भी ये डुबा देने वाला है। वो पत्थर आज बंदरों के लिए पुल का काम करके तारने वाला बन गया। ये महिमा न तो समुद्र की है, ये महिमा न पत्थरों की है और न ये महिमा बंदरों की है। तो फिर किसी की नहीं है तो क्या है कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजही जाय प्रभुवान। इस प्रसंग को देख करके मनुष्यों को ये विचार करना चाहिए कि भगवान के प्रताप से पत्थर तर गए तो हे भगवान, इस संसार सागर से आपका ध्यान भजन करने वाले न तरे ऐसा कैसे संभव है। परंतु मतिमंद तो वे लोग हैं जो ऐसी भगवान की स्थिति देख करके भी भगवान में विश्वास ही नहीं करते, भगवान का भजन ही नहीं करते, भगवान से विमुख हुए वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर वो सेतु बनाया, भगवान को बहुत अच्छा लगा। बंदर लोग उस सेतु पर चढ़ चढ़ करके खूब जोर जोर से नाचने लगे हुए। भगवान सेतु के किनारे आए और किनारे आकर के और फिर चारों तरफ दृष्टि डालने लगे समुद्र के ऊपर। सिंधु बहुत आई, अरे इतना विस्तार का सागर, इतना ऐसे भगवान आश्चर्य कर रहे हैं। भगवान के अंदर से ऐसी दया, भगवान के अंदर से ऐसी विशेषता प्रकट हो रही है कि पानी के अंदर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वे बहुत बड़े बड़े सर्प हो, और चाहे मछले हो, मछले जो सौ सौ योजन वाले थे, सौ सौ योजन वाले, 400-400 कोस में एक एक शरीर वाले, और वे भी अपने से किसी न किसी और के मुंह में आए हुए डरे हुए, ऐसे एक तिनई जे खाई एक अनते डरते पिडेराई, एक एक से बढ़कर वो इसको डरता था, वो उसे डरता था, वो उससे डरता था। परंतु जब भगवान वहां पुल के ऊपर खड़े हुए ना, तो भगवान के दर्शन किए तो सबके मन से बैर खत्म हो गया, सब भगवान को देखने लगे। प्रभु ही बिलो कई टरई न टारे, अरे चलो भाई अब चलो, हो गया चलो चलो, बस क्या बताएं। उनको इतना आनंद मिला कि भगवान ये पुल बने तो आज आपके चरणों से लेकर और ये मस्तकार विंद तक दर्शन हो, वदनार विंद तक दर्शन हो, चरणों से लेकर मस्तक तक आपके दर्शन हो महाराज। अब तिनकी ओटन देखी बारी मगन भये हरि रूप निहारी। कई कई लोग तो है, कई कई ऐसे प्राणी थे खूब बड़े बड़े, तो पीछे वाले दिखे नहीं तो वो क्या करें, वो पीछे वाले आकर के उनके ऊपर चढ़ जाए और दर्शन करें, यही हमारे ऊपर कह रहे रे दर्शन। अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे प्रेम से सब जो जीव जंतु भगवान के दर्शन करने लगे। और अब जो है वो सेना चली तो वो बंदरों की बड़ी विचित्र बात, बंदरों ने देखा कि अपने कैसे चलो, तो भाई सेतु पर तो भगवान चल रहे हैं। इतने में ये कई जानवर प्रकट हुए ही थे अंदर से दर्शन करने के लिए, वे बंदरों ने क्या किया उनके ऊपर चरण, और वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में लगे हुए बंदरों के चरण हमारे शरीर का स्पर्श कर रहे हैं। वो अंदर डुबकी लगा हुआ ही नहीं, वो यूं खड़े रहे और बंदर एक पर बैठे, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। सेतु बंद भय भीर अति कपिनब पंथ उड़ाए, अपर जल चरानी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार रही जाए। कोई देखते हैं खूब भीड़ होगी, अब क्या करो, खूब भीड़ होगी तो छलांग लगाओ और आगे चले जाओ। कोई कहते हैं उस छलांग लगाने वालों की भी बड़ी होड़ लग रही है तो क्या करें, तो जलचरों के ऊपर से चलो। भगवान ये सब बंदरों का कौतुक देख रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब हंसते हंसते भगवान सेना का उत्साह बढ़ाते। ऐसे करते बहुत जल्दी वे लंका के उस पार आ गए, डेरा लगा दिया। भगवान ने आज्ञा दी जाओ यहां जितने अच्छे अच्छे फल फूल है सब खाओ। तो बंदर लोग गए तो वहां भी एक विचित्र बात हुई। वो वृक्षों ने क्या किया, ऋतुवर कुरुति काल गति त्यागी। ये कौन से ऋतु का फल है, अब भाई देखो सर्दियों में कोई आम थोड़े ही होते हैं, कोई कोल्ड स्टोर थोड़े ही था, पर नहीं जो भी समय कोई ऋतु देखी कोई कुरितु देखी, उन्होंने सब वृक्ष ने अपने अपने फल प्रकट कर दिए। सब तरु फरे राम हित लागी, अरे राम जी की सेना कब कब आएगी, राक्षस लोग तो हमारा फल खा खा करके लंका का जो है बदनाम, लंका को अपमानित कर दिया। आज देखो राम जी आए, बंदर आए, भालू आए, राम जी के काम के लिए आए। सब तरु फरे राम हित लागी, सबके सब राम जी के हित के लिए फलने फूलने लग गए। जिस वृक्ष के वहां पर जाए वही वृक्ष एकदम फलवान हो जाए, सब ऐसे ही फलवान हो गए। और खूब बंदरों ने खाए, खा करने के बाद उन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके लंका की तरफ फेंका। लंका की तरफ क्यों फेंका भाई, मार्ग अवरुद्ध करने, लंका की सेना है ना वो इधर से न आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शिविर लगा के बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो एक साथ निशाचर आएंगे, तो वहां उन्होंने खूब मार्ग अवरुद्ध कर दिया। फिर भी कई निशाचर आए तो उन निशाचरों को पकड़ पकड़ करके चारों तरफ से उनको घेर करके बंदरों ने नचा नचा करके कहा बोलो राम, बोलते हो कि नहीं, तो साहब राम अब जाओ, कई प्रभु सुजस देई तब जाना। उनके मुख से राम का नाम का उच्चारण करवाया, उनको भगवान की कथा सुनाई, अब जाओ अब तुम जाओ। और जो बंदरों ने कहा कि हम राम का गुणगान नहीं गाते, हम तो रावण का गुणगान गाए, तो नाक कान काटे उनके, नाक कान काट के जाओ रावण के पास जाओ। तो वे रावण के पास गए, अब ध्यान से सुनना, रावण के पास गए तो उनके इस ढंग से नाक कान काटे थे बंदर, बटको बोड़ी हटे, यूं थोड़ी देखी जाएगी क्या है काई है, यूं बटको बोड़ी हटे, यूं बटको बोड़ी, बड़े बयानी बदसूरत हुई। रावण कन गया ऐसा रख सारा राक्षस बेला, और रावण कन गया, रावण पूछे हो अरे थाने ई ढंग से थारा नाक कान कौन काटे, अरे एक बार तो वो हंसे और यूं देखियो, वह कह तू तो हंसे हेठ बैठे और मारे पर आफत आ गई, काय हो बांदरारी सेना आएगी क्या आई, क्या पुल बांध दियो, ये जो पुल बंधाना ये रावण को लगा गया, अरे पुल तो मैं नहीं बांध सका, समुद्र को केवल यूं लांग के आ जाते ना रावण को आश्चर्य नहीं होता, रावण को आश्चर्य, पुल बांध दियो बननिधि निर्निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयुधि नदी, 10 बार नाम लिया, 10 मुख से एक एक नाम लिया। दस मुख से एक एक नाम लिया समुद्र का। अरे बन निधि को मान लिया, नीर निधि को, जलधि को, सिंधु को, वारिस को, तोई निधि को, कंपति को और उदधि को, पयोधि को, नदीश को मान लिया। बड़ा विकल, डर गया, आंखें उसकी फटी रहे। मंदोदरी ने देखा कि बड़ा भयभीत हो गए रावण, तो हमारे पतिदेव बड़े भयभीत हो गए। अब रावण ने क्या किया, अपने भय को छिपाते हुए ऊपर से ही झूठी एक हंसी हंसी, हंस कर गए और वो महल में गया और मंदोदरी साथ साथ में गई। मंदोदरी ने रावण से बड़े स्नेह पूर्वक कहा, कैसे कहा, वो कहने की स्टाइल उसकी यूं चरण नाई, चरणों में प्रणाम किया और अपना आंचल पसार दिया। माने एक चीज मांगू आप, हे प्राणनाथ, आप क्रोध छोड़ करके आज मैं आपसे कुछ विशेष चीज मांगने के लिए हाथ ही पसार चुकी हूं, तो अब आज आपको खुल करके मुझे दान देना होगा। देखिए महाराज, प्राणनाथ, बैर उसके साथ करना चाहिए जो बुद्धि में बल में आपसे कम होता हो। बुद्धि बल के द्वारा जिसको आप जीत सकते हो उसके साथ बैर करते हुए आप अच्छे लगते हो, लेकिन आप राम जी के साथ बैरत विरोध करते हो। आपको पता है कि राम जी में और आप में कितना अंतर है, जैसे सूर्य में और जुगनू में अंतर होता है, इतना अंतर है। आपने मधु और केटप के बारे में सुना, मधु और केटप को भगवान विष्णु ने मारा था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को वराह और नृसिंह भगवान ने मारा था, वही विष्णु भगवान, और बलि को जिन्होंने बांधा था वो वही विष्णु भगवान, और सहस्रार्जुन को जिसने मारा था वही परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ही आए थे, और वही आपके अत्याचारों से व्यथित होकर यहाँ संसार में अवतार लेकर के आए हैं। हे नाथ, आप मेरे सौहाग की यदि रक्षा करना चाहो तो आप ऐसा करो कि राम जी को सीता जी को सौंप दीजिए, उनके चरणों में अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा याचना कीजिए, और अपने पुत्र मेघनाथ को लंका का राज्य दे दीजिए, और जिस जंगल में अभी राम जी महाराज विराजमान है उस जंगल में जाकर आप भगवान का ही भजन कीजिए। महाराज, आप निश्चित मानिए कि एक सिंह के सामने कोई जाकर के लिए शरण हो जाता है तो सिंह नहीं खाता, पशु नहीं खाता। आप राम जी के सामने शरण जा नहीं सकते हैं, और आपके लिए तो उदाहरण बन गया विभीषण, देखो वहां उनके शरण में गया तो आज विभीषण उनका जो है कितना चहेता बन गया। विभीषण से पूछे बिना कुछ काम नहीं करते हैं, ये एक तरह से आपको चुनौती दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। भगवान ने विभीषण को शरण में इसीलिए लिया है नाथ कि आप भी उनकी शरण में आ जाओ। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, मैं उनकी पोल जानती हूं, उनमें सबसे बड़ी कमी है, उनके पास जाओ और उनके शरणागत हो जाओ, तो फिर वे भगवान सारे पाप नष्ट कर देते हैं। भूप राज तजी होई बिरागी, आप इतना भी नहीं सोचते, आप कितने पढ़े लिखे सब जानते हैं, बड़े बड़े राजाओं ने महाराजाओं ने राज्यपाट छोड़ा, बैराग्य किया किसके लिए, इन्हीं भगवान के लिए किया था। ऋषि मुनि जंगलों में फल फूल खाकर के क्यों रहते हैं, इन्हीं राम जी के भजन के लिए करते हैं, और वो राम आज आपके बिना बुलाए लंका में पधार गए। इससे बढ़कर आपका क्या सौभाग्य होगा, इसका सदुपयोग कीजिए, और आप जाकर के उनके चरणों में निवेदन कीजिए कि महाराज मेरे से गलती हो गई, जो पिय मानव मोर सिखावन, यदि आप मेरी ये सीख मान लेंगे तो देखो देवता असुर जितने भी प्राणी आपसे हारे हुए हैं वे प्राणी तो आपको सामने ही डरे हुए हैं, और अब आप राम जी की शरण में चले जाओगे तो वे ही व्यक्ति आपका गुणगान गाने लगेंगे। अरे रावण, ऐसा हमने नहीं समझा था, तू तो इतना भगवान का भक्त निकला, कितना आपका सुयश गाएंगे, ऐसे कहकर गए और खूब रो रो करके वो कहने लगी। रावण ने कहा कि अरे क्या तुम व्यर्थ में डरती हो, अरे मंदोदरी, मेरी पत्नी होकर के तुमको अभी तक मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं हुआ। जग जोधा को मोह समाना, मेरे संसार में कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे सामने युद्ध भूमि में टिक सके। ये वरुण जो जल का देवता है, समुद्र का देवता है, मेरे सामने यह नौकर बना हुआ है। कुबेर, वायु, यमराज, काल, ये तो मेरे नाम से कांपने वाले हैं। तुमको क्यों भय हुआ है? ऐसा भय नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के मंदोदरी को छोड़ करके सभा में चला गया। मंदोदरी ने देखा कि बस जैसे मरने वाले व्यक्ति के दवाई नहीं लगती, वैद्य जी खूब दवाई दें, इंजेक्शन दें, फिर कोई फायदा नहीं है, तो वह कहते हैं बस अब ठीक है, भगवान का भजन करो। तो मंदोदरी हृदय से जाना और काल अवश्य उपजा अभिमाना, इनको इतनी अच्छी बात कही लेकिन अभिमान के कारण से ये नहीं उपज रही है बात, तो अब ये मरने वाले हैं। इधर रावण तो बस घमंड में गया और अपने मंत्रियों से कहा, अंदर से बड़ी घबराहट और ऊपर से थोड़ा निर्भयता का स्वरूप दिखाते हुए बोला, बताइए मंत्रियों, राम तो सेना लेकर के समुद्र पर पुल बना करके बंदरों सहित यहां आ गया है, क्या करना चाहिए, इसलिए आपको बुलाया है। वो मंत्री भी इसी माजने के कि क्या महाराज, बार बार क्या मीटिंग करते हो इन बंदरों के कारण से? महाराज हमको यहां जितना भी मांस मिला आज तक पशु पक्षियों का मांस मिला, पशु मिले पक्षी मिले वही खाए हमने, मनुष्य का मांस कुछ अच्छा होता है और बंदरों का मांस भी अच्छा होता है, बंदरों का, भालुओं का और मनुष्यों का मांस हमको खाने को नहीं मिला महाराज। हमारे लिए तो ये एक बहुत बढ़िया सुंदर गोट का समय आया है और आप इस समय में डर रहे हो, तो महाराज क्या हमारे आनंद से आपको भय लगता है? ऐसी उन्होंने बात कही तो रावण का ही बेटा प्रहस्त नाम का, वो भी मंत्रियों के बीच में बैठा हुआ था, वो खड़ा होकर बोला, महाराज नीति से विरुद्ध कोई काम मत करना, ये आपके जितने मंत्री हैं सब ये मुंह सुहाती बात बोलते हैं, केवल आपको ऊपर से प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं, इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। एक बंदर आया था समुद्र के ऊपर, एक छलांग मार करके यहां आया, वो उनका भय इनके सबके हृदय में बैठा हुआ है, उस समय इनको भूख नहीं लगी, वो तो बहुत बड़ा भी बन गया था, क्या उसका मांस उसको प्रिय नहीं लगा था? वो एक एक करके एक एक का घर जलाया, किसी का खून नहीं खोला, और आज इतनी बड़ी बात करते हैं। सुनत नीक आगे दुख पावा, अभी तो इनकी बात आपको अच्छी लगती है, हे महाराज परिणाम में आपको इसका बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ेगा, आप विचार कीजिए उस एक बंदर ने कितनी करामात की है, सब कुछ यहां से देख करके हमारा कितना बड़ा नुकसान करके, सेना को जला करके, बारूदों को जला करके, सारा सामान हमारा जला करके, आग के बहाने से उसने सारी शक्ति को क्षीण किया है, और उसके बाद अब इतने बंदर यहां आ रहे हैं, आपको तो अब सोचना चाहिए। सोभनु मनब्ज खाब हम भाई, अरे ऐसे बंदरों को हम खाएंगे? कहो 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 सचिवों, चुप क्यों बैठे हो? उस समय तुम्हारी भूख कहां चली गई थी? हे महाराज संसार में मीठी वाणी बोलने वाले बहुत मिलेंगे और ठकुर सुहाती बातों से राजी होने वाले, आत्म प्रशंसा से प्रशंसित होने वाले, राजी होने वाले बहुत लोग मिलेंगे, परंतु कठोर बात कहने वाले और सुनने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं। इसलिए मेरा ये प्रस्ताव दूसरा है कि आप एक श्रेष्ठ पुरुष को यहां दूत बना करके सीता जी को साथ में भेज दो और उस दूत के साथ राम के पास संदेश सुनाओ कि हे राम, हमने लक्ष्मण की चुनौती को स्वीकार किया है और इस दूत के साथ हम सीता को तुम्हें दे रहे हैं, तुम सीता ले लो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये सीता हम तुमको दे दिए हैं, अब तुम्हारा यहाँ लंका में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ तुम यहां से, ऐसा आप बोल दीजिए। और स्त्री को प्राप्त करने के बाद भी यदि राम यहां युद्ध करने पर ही उतारू हो जाएगा तो जान दो, फिर हम सब लड़ेंगे मरेंगे, नाहित सन्मुख समरमयी तात करिए हठी मारी। हम हठ पूर्वक मारेंगे उसको कि तुम्हें तुम्हारी सीता मिल गई, क्यों जबरदस्ती हमसे युद्ध करते हो। यदि ये बात आपको प्रिय लगती हो तो इससे आपका सब प्रकार से सुयश फैलेगा। रावण ने कहा, रे प्रहस्त, मेरा बेटा होकर आज तेरे अंदर ऐसी बातें क्यों आई? अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ बेटा, तू पहले से ही भग रहा है ना महाराज। मैं कायर होकर के ये बात नहीं कहता हूं, तो फिर तुम्हारे मन में संदेह क्यों हुआ? हमारे इस निश्चर वंश के जड़ के अंदर तू कीड़े का काम करता है। जैसे बांस का पौधा होता है उसमें घमोई लग जाती, कीड़ा लग जाता है, ऐसे ही हमारी वंश का तो कीड़ा है। तेरी बुद्धि हमारे यश का नाश करने वाली है। तो उसने कहा, अच्छी बात है महाराज, फिर मैं आपके इस विचार में सहमत नहीं हूं। बाहर जाते जाते कहने लगे कि महाराज, हित भरी बातें काल विवश व्यक्ति को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, ऐसे अच्छी नहीं लगा करती। इसका परिणाम सिवाय सर्वनाश के और कुछ होने वाला नहीं है। इतना कहकर के प्रहस तो निकल गया। और रावण देखो कैसा बुद्धिहीन, रात का समय और महल के ऊपर एक और महल था, उस महल में चला गया और वहां पर नाचने वाले स्त्री पुरुष थे, नाच गान वहां होता था, वहां पर पखास वगैरह जो है बजाए जाते थे, नृत्य कर रही अप्सरा प्रवीणा, अप्सराएं आकर नाच नाचती थी, वहां पर वो चला गया। देखो पार्वती, क्या ये भोग विलासिता का दुष्परिणाम है? इंद्र जैसे सुना शीर सत सरिसो संतत करई विलास, सैकड़ों सैकड़ों इंद्रों के पास भी इतनी भोग विलास की सामग्री नहीं, ऐसा रावण के यहां भोग विलास का पदार्थ उपस्थित, सब चीजें उपस्थित, और उसके ऊपर आज संसार का सबसे बड़ा शत्रु उसके सिर के ऊपर नाच रहा है, फिर भी वो भोगों से अपना मन नहीं हटाता है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। और इधर सुबेल पर्वत पर भगवान बड़ी गंभीरता से बैठे हुए अपने चहितों को पास में बैठाए हैं, और लक्ष्मण जी ने एक बड़ी सुंदर फूलों की सैया बनाई है, उसके ऊपर भगवान के मृगछाला लगाई है और भगवान वहां पर लेटे हुए हैं। भगवान की गर्दन सुग्रीव की गोद में है और भगवान के बाईं तरफ धनुष पड़ा है और दाहिनी ओर तरकस पड़ा है, और गोद उनकी सुग्रीव की, सिर उनका सुग्रीव की गोद में है, और पास में बैठे हुए विभीषण जी कुछ मंत्रणा कर रहे हैं, कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कितनी बढ़िया एक वहां बात कह रहे हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। अंगद और हनुमान जी दोनों के दोनों उनके चरण दबा रहे हैं, और पीछे लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे हैं। ये लक्ष्मण जी महाराज इतना क्रोध, इतनी आंखें एकटक लगाई हुई, और धनुष बाण ये किसके ऊपर लगा रखे हो? लंका की तरफ करो ना, एक बाण से कितने राक्षस मरेंगे, आपने अपनों के ऊपर ही यूं तान रखा है, ये क्या बात है? लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो भाई, मेरा काम सेवा करने का है, मेरे लिए इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय सिवाय राम के और कोई नहीं है, और राम जी का धनुष बाण दूर पड़ा है, तरकस यूं पड़ा है, धनुष यूं पड़ा है, और राम जी की गोद जिस बाली को मारा है उसके भाई की, उसके भाई की गोद में राम जी की नस है, और जिसके भाई को मारने जा रहे हैं उस विभीषण के साथ में राम जी कानाफूसी कर रहे हैं। ये मुख्यांग है, ये ऊर्ध्वांग कह दो, मुख्यांग कह दो, ये तो सब शत्रुओं के भाइयों के हाथ में है। और चरण कमल चांपत विधि नाना, अंगद वो है कि जिसके बाप को राम जी ने मारा है, उनके हाथ में ये है, चरण है, और हनुमान वो है जो सुग्रीव का दास है। इन चारों के हाथ में हमारे आराध्य का शरीर है। यदि एक ने भी कहीं कोई कुटिलता की तो चारों का सिर एक साथ उड़ा दूंगा। ऐसे निशाने में बैठे हुए लक्ष्मण जी महाराज, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटि निशंग कर बाण सरासन, एही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। कहते इसका जो ध्यान करता है वे भगवान में लीन रहते। ये क्या सा ध्यान करने की विधि है? ध्यान तो ये करो कि भगवान के मुकुट लगा हुआ है और जो है भगवान नीलांबर है, भगवान जो है श्याम मूर्ति वाले हैं, पीतांबर धारी है भगवान, ऐसे भगवान का सौम्य रूप धारण करो। भगवान के तो ये झांकी दूसरी है। यहाँ कहते हैं इस रूप का जो ध्यान करता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? भगवान कितने विश्वास करने वाले हैं। सुग्रीव को भगवान ने अपनी गर्दन दे दी और विभीषण पर विश्वास कर रहे हैं जिसके भाई को मारने जा रहे हैं। अंगद और हनुमान को अपना शरीर दे दिया, ये पैर दे दिए तुम रखो। और इधर लक्ष्मण जी का भी ये देखो कि लक्ष्मण जी कितनी सेवा में तत्पर, एक एक की भक्ति, एक एक का स्वरूप ये सबको मोहित करने वाला। उसी समय पूर्णिमा थी, वो चंद्रमा निकला तो भगवान ने देखा कि ओहो, जैसे कोई अंधकार रूपी हाथी को चीर करके कोई सिंह आया हो और रात रूपी सुंदरी का श्रृंगार हो रहा हो और ये तारे रूपी मोती बिखरे हुए पड़े हो, देख करके भगवान ने कहा, अरे रे सुनो सुनो, आप लोग सुनो, क्या ये जो चंद्रमा में जो मेचकता है, मेचकता माने कालिमा, ये चंद्रमा में जो थोड़ी कालिमा दिखती है ये किस कारण से लगती है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो तो। सुग्रीव ने कहा, हाँ महाराज, चंद्रमा में कालिमा तो है, ये किस कारण से है? सुग्रीव जी, ये तो पृथ्वी की झाई उस पर पड़ रही है। ये परीक्षा ली है भगवान ने कि सुग्रीव के मन में मेरे प्रति प्रेम है अथवा अपने राज्य में, अपने भूमि में प्रेम है। तो कहा कि महाराज, ससिमऊ प्रगट भूमि के झाई, ये चंद्रमा के अंदर पृथ्वी की कालिमा पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुग्रीव विभीषण जी ने कहा, मारे उ राहु शशि कह कोई, उर्धरी परिश्यामता सोई। महाराज, राहु ने चंद्रमा को इतना मारा ही वो लील उपड़ गई। वो ठीक है, तेरे रावण ने चरण प्रहार किया ना, लात मारी, वो तेरे को रावण का भय बैठा हुआ है। सुग्रीव के अंदर पृथ्वी का लोभ बैठा हुआ है और विभीषण के मन में भय बैठा हुआ है। ठीक है। अब अंगद जी बोले कऊ कह जब विदि रति मुख की ना, सार भाग ससि हरि कर लीना। महाराज, मेरे मन में दूसरी बात बैठी। क्या बैठी भाई? कि जब विधाता ने उस कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया तो चंद्रमा का सारा सौंदर्य लाकर उसके मुख पर उडेल दिया, तो उसका सार भाग ले लिया, तो इसमें चंद्रमा में छेद हो गया। छेद हो जाने से आकाश की कालिमा इसमें से आर पार दिख रही है और कुछ नहीं है। अच्छी बात है, तेरे अंदर लालच पड़ा हुआ है। लालच क्या है? अंगद देखता है कि सुग्रीव सारे राज्य का धन कोष खजाना सब अपने बेटों को देगा और मेरे को तो ये मरने के बाद राज्य मिलेगा, तो एकदम खोखला राज्य मिलेगा। राम जी महाराज कहते हैं, देखो साहब, एक तो लोभ ही, एक लालची, एक जो है ये भयभीत, ये तो मेरे पास बैठे हुए हैं, बताओ। अब भगवान ने कहा, तो मेरी भी बात सुनो। कि क्या? कि ये चंद्रमा और जहर दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, जानते हो ना? कि हाँ महाराज। तो वो जब चंद्रमा पैदा हुआ तो इस जहर में, इसके जहर इसका भाई है, इसके किरणों के अंदर कुछ जहर का अंश आ गया। देखो, भाई भाई की शक्ल मिलती है कि नहीं? भाई भाई की चाल मिलती है, शकल मिलती है, बोली मिलती है, भाई भाई में बड़ा सामंजस्य मिलता है शरीर दृष्टि से। तो भाई इस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी तो जलाने वाला, ये जहर भी और ये चंद्रमा भी देखो जो स्त्री के विरह में रो रहे हैं उनको जलाने वाला है। तो भगवान ने बता दिया कि मेरे अंदर सीता की भक्ति निवास करती है। अब अंत में रहे हनुमान जी महाराज। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तव मूरति विधुर बसती सोई श्यामता अभास। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज सबने अपनी अपनी बात कही महाराज, पर मेरी भी एक अर्ज सुनो। क्या? ये चंद्रमा आपका दास है, दास है तो क्या करता है? बस आपकी श्यामल मूर्ति का ध्यान करता है। आप जैसे श्यामल है, श्याम रंग वाले, आपका हरदम ध्यान करता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हे प्रभु सूर्य वंश में आपने अवतार लेकर सूर्य वंश को कृतार्थ कर दिया, पधारिए महाराज पधारिए। अब इस रामावतार के बाद यहाँ चंद्रवंश में आपका अवतार हो इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिए आपका ध्यान करते करते इसके अंदर आप ही का स्वरूप बस गया है। हनुमान जी महाराज की ये बात सुनकर के पवन तनय के वचन सुनी विहसे राम सुजान। भगवान खूब प्रसन्न हो गए, वाह हनुमान जी वाह वाह, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। तो हनुमान जी के मन में केवल भगवान की भक्ति बसती थी, बाकी जितने लोग थे और लक्ष्मण जी के मन में केवल भगवान की सेवा बसी हुई थी, बाकी के मन में कहीं भय बैठा है, कहीं लालच बैठा है, कहीं लोभ बैठा है, ऐसे अलग अलग बातें थी। जो भगवान की विशेष भक्ति करने वाले होते हैं उनमें सिवाय भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं रहता। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय जय हनुमान
सीताराम 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 जय जय हनुमान
जय सीताराम 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 जय जय हनुमान
सीताराम 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 जय जय हनुमान
जय सीताराम 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 जय जय हनुमान
सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय जय सीता
जय सीताराम 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 जय जय हनुमान
जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की
जय।
पवन सुत हनुमान की
जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की
जय।
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय।
आनंद कंद भगवान की
जय।
भक्त वत्सल भगवान की
जय।